مشکل الفاظ کی وضاحت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو آزر، یعنی باپ کا نام یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ آزر. کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام جو ہمیں تورات انجیل سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں تاریخ تھا، تا الف تا را اور خوا تاریخ، اور آزر جو تھا ان کے ایک بت کا نام تھا، اور کہتے ہیں یہ اپنے بت کی چونکہ بہت خدمت کرتے تھے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا لقب پڑ گیا، اور بعض لوگوں کا لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، تو اس طرح ان کا نام جو ہے وہ آزر مشہور ہو گیا. دے سے تاریخ. اسنامن جو ہے یہ بت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اسنامن، اور بت کے لیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سنم سواد نون میم، اسنامن کا واحد ہے سنم. یہ کہتے ہیں چاندی پیتل لکڑی کے خود تراشے ہوئے بتوں کو، مورتیاں وغیرہ، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں قابل انتقال، یا پھر ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تو صنعت الاسنام بت فروشی کے فن کو بھی کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے نا، ان کا بزنس ہی یہ تھا، کاروبار یہ تھا کہ وہ بتوں کو بناتے تھے بیچتے تھے. ٹھیک ہے. آلیہا، تو ایک ہوتا ہے الہ، الہ کیا ہوا؟ واحد. تو آلیہا جمع ہے اس کے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت 76 میں ہے فلما جننا جیم نون نون، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ، ہے نا، وہ چیز جو آنکھوں سے اوجل ہو. تو جنت جو ہے، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی زمین کو درختوں نے جیسے بالکل چھپا دیا ہے، یعنی اتنی ہریالی ہے کہ زمین ہی چھپ گئی، تو جنت باغ کے لیے آتا ہے. اسی طرح جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ تو چھپا ہوتا ہے نا، اس کو جنین کہتے ہیں. اسی طرح جن کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، معنی کیا ہے کہ جن نظر نہیں آتا، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی کہ فلما جن علیہ اللیل، کہ جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا، ہے نا، یعنی رات آ گئی، رات تاری ہو گئی. پھر دوسرا لفظ ہے 77 میں جو مشکل ہے بازغن. بازغن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے بازاغین، اس کے معنی ہے چمکنا، چمک، بزاغا، سورج کا طلوع ہونا جبکہ اس کی روشنی پھیل رہی ہو، سورج چاند ستارے یا جتنے بھی اجرام فلکی ہیں ان کی روشنی کے لیے آتا ہے جب وہ طلوع ہو رہے ہوں، یعنی طلوع ہونے والے ستاروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ بازغہ نام بھی رکھتے ہیں، تو جیسے. اور چمک کے لیے قرآن میں اشرقا، شرقا، ہے نا، واشرقت الارض بنور ربها، کہ جب زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی. تو مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جو جگہ ہوتی ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے، روشنی سی ہوتی ہے، تو مشرق شرقا، یہ بھی چمک کے لیے آتا ہے. کیا بات ہے، آوازیں زیادہ آنے لگیں. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ سقبا، ثاقب، اس کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آگ کا روشن ہونا، ستارے کا چمکنا، یا پھر یعنی سرخی میں آگ کے مشابہ ہونا، تو روشنی کا پوری طرح نفوذ ہو جانا، کسی چیز میں سوراخ کر کے جیسے روشنی کا چلا جانا، ثاقب، شہاب ثاقب، یعنی اس طرح، یہ بھی چمک کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، سرخ اور تیز روشنی، ثاقب. پھر سنا، سین نون الف، یہ بجلی کی جیسے ایک چمک ہوتی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں لشک، تو نگاہوں کو خیرہ کرنے والی روشنی. کوند، پھر ہے دری، بہت زیادہ چمکدار، درون چمک اور زیادتی دو تصور ہیں، یعنی چمک بھی ہو اور خوب ہو، اس کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کوئی تلوار ہے چمک بھی بہت رہی ہو اور یعنی چمک بھی ہو اور بہت زیادہ ہو تو سیف ان دری ان. اسی طرح در چمکنے والے موتی کو بھی کہتے ہیں کوکب ان دری ان در یتیم. یعنی جیسے ایک موتی بہت چمکتا ہے نا تو جو یتیم ہوتا ہے وہ مصیبتوں پریشانیوں میں اس کی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں. یعنی یتیم ایسے جیسے کہ موتی، اور جس سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لینا چاہتے ہیں نا اس کو ازمائشوں کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی در یتیم تھے نا، اور عام دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ازمائشوں میں ڈالتے ہیں. تو بہرحال دریون بھی چمکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بزاغا، اشرکا، سقابا، سنا اور دریون. تو یہاں پہ کیا ہے؟ بازغن. پھر یہ لفظ ہے 77 میں افالا. افالا جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے یہی ہے حمزہ فا لام. میں نے الف فا لام کیوں نہیں کہا؟ اس کے اوپر حرکت ہے اور الف کبھی شروع میں نہیں آتا. اب یاد رکھیے گا، کیونکہ الف شروع میں آئے گا بولیں گے کیسے؟ وہ کسی کے ساتھ مل کر آتا ہے نا، تو بغیر حرکت کے پھر اس کو آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. افلا چھپ جانا، ویسے تو غائب، غائب ہے نا، اور غائب اوجل چیز کو کہتے ہیں، پوشیدہ کو. اور افلا کا لفظ جو ہے یہ سورج چاند ستاروں کے چھپنے اور ڈوبنے کے لیے آتا ہے. عام طور پہ اس کا استعمال جو ہے وہ سورج چاند اور ستاروں کے لیے آتا ہے، اجرام فلکی کا چھپنا. پھر اسی طرح ایک چھپنے کے لیے غرابا بھی ہے، غروب ہونا، یہ سورج کے چھپنے اور ڈوبنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سارے سیارے بھی غروب ہونا. عذابا یعنی دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ سے سب چیزیں جو ہے، اللہ سے کوئی بھی چیز اوجل نہیں ہے. عین زابا، عذابا، یہ بھی جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ دور نکل جانے کی وجہ سے غائب ہونا. وقبا، فمن شر غاسق اذا وقب، کسی گڑے میں اتر کر غائب ہونا. سورج کے غروب ہونے کے لیے آتا ہے، کیوں کہ سورج پیچھے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح اندھیرے کے لیے آتا ہے، پتھر کا گڑا جس میں پانی جمع ہو جائے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور شب تاریخ کی برائی سے جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے. بتانا، بتانا پیٹ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، اور اندر کا حصہ چونکہ مکمل طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے بطن کا استعمال کسی چیز کے مکمل طور پر پوشیدہ ہونے کے لیے ہوتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ بتانا، پوشیدہ دوستیاں، رازداری کی دوستیاں نہیں کرنی کافروں کے ساتھ، ہے نا. اور آپ نے قرآن میں آپ یہ بھی پڑھیں گی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ظاہر کا اپوزٹ بطن یہاں پہ استعمال ہوا ہے. توارا، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ توارا چھپنا، چھپانا، خود دوسرے سے چھپتے پھرنا. یہ توارا حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے، حقیقت سے شکست کھا کر. اسی طرح خفی ہے، یہ بھی چھپنے کے لیے آتا ہے. اور کنا، کنا ہننا، بیدم مکنون، اور اکنا آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، تو یہ بھی چھپنے کے لیے آتا ہے. تو بہرحال چھپنے کے لیے بہت سے لفظ ہیں، اور تھوڑی سی اس کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ تھوڑا آپ کو بار بار کی تکرار سے، بار بار کے سننے سے اس کی سمجھ جو ہے وہ آتی جائے. تو یہاں پہ افلا بھی چھپنا ہے، لیکن سورج چاند اور دوسرے سیاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آیت 80 میں اتحاجونی، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حاجیم جی. معنی کیا ہے؟ جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں. پھر اس کے بعد ہے آیت 81 میں فریقین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دو فریق، فریقین، دو فریق، ٹھیک ہے، دونوں فریقوں میں سے. پھر آیت 83 میں نرفاؤ، کیا روٹ ورڈ ہے؟ باقی لوگ نہیں بول رہے، آپ سب کہاں ہیں؟ نرفاؤ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رافعین، رفع، اسی سے رفعت ہے. है ना, बुलंदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुलंद करना। फिर इसके बाद आयत 84 है, तो वहाबना क्या रूप है इसका, वहाबा बख्श देना, दे देना। फिर इसके बाद आयत 85, 86, इन सब में पैगंबरों के नाम हैं, आपको आते ही हैं। 87 में है वज तबीना हूं, पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, जीम बा वो, किसी चीज को जमा करना, उसे कहीं ले जाकर किसी को मुंतखिब करके अपना बना लेना, अपना मुकर्रब कर लेना, यानी किसी चीज को जमा करना, फिर उसे कहीं ले जाकर उसमें से किसी को मुंतखिब करके अपना करीबी बना लेना। बास कहते हैं कि इसका रूट वर्ड जो है जीम बा या भी है, पहुंचाना, इसी से इज्तबा मुज्तबा यानी चुन लेना। तो बहरहाल किसी चीज को जमा करना या उसमें से किसी को मुंतखिब करके अपना करीबी बना लेना, इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मुज्तबा है ना, कि अल्लाह ने उनको चुन लिया। तो जो मुज्तबा लोग होते हैं ना, वो कौन होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, वज्तबई ना हूं और इनको हमने चुन लिया। तो 88 में हबिता है, हबिता के मानी क्या है, गाय जो चारा खाती है, फिर वो चारा जो है वो फूल जाए जिससे पेट जो है वो फट जाए, है ना, फिर वो खाना जाया हो गया ना, और जैसे अफार नहीं हो जाता किसी को, अफार के अफार क्या कहते हैं, है? अफारा। तो असल में खाना तो इसलिए खाया जाता है कि वो जूदे जूद हजम होके जिस्म का हिस्सा बने, लेकिन वो खाना जो है वो जिस्म का हिस्सा बनने की बजाय उससे फार की हो जाए किसी को, तो फूल जाए पर वो जाया हो जाए, तो ये है हबिता, जाया हो जाना। फिर इसके बाद आए 89 में वक्कलना, क्या है रूट वर्ड इसका, वो काफ लाम, और इसके मानी क्या है, कोई मामला किसी के सुपुर्द कर देना, है ना। वकील कौन होता है, जिसके सुपुर्द आप अपना केस कर देते हैं, और उस केस उसके सुपुर्द करने के बाद आप बिल्कुल जो है वो मुतमिन हो जाते हैं, है ना, कि वो उसको जो है वो डील करेगा, और वो जैसे भी फिर उसको जो है वो डील करे, ठीक है। फिर इसके बाद है आयत 90 में सभी हुदा हो मुक्तदे, है ना, और इसका जो है मुक्तदे, इसका रूट वर्ड है काफ दाल वो, इसके मानी है अताक करना। नमाज में भी जो आगे नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं आगे वाले को, और पीछे वाले को क्या कहते हैं, मुक्तदी, जो इमाम को फॉलो करते हैं कि मुक्तदी। तो अगर इमाम गलती करे नमाज पढ़ाते हुए, तो इमाम की गलती मुक्तदी की गलती बन जाती है ना, फिर उसको भी सजदा सहव जो है वो करना होता है। तो अगर इमाम अदा कर ले, आप रुकू में भी मिल गए, तो इमाम का अदा आपका अदा है, रुकू में भी कहते हैं कि आपको रकत मिल गई। तो बहरहाल मुक्तदी कौन होता है, अतात करने वाला। फिर आयत 91 में करातीसा, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, क्या रूट वर्ड है इसका, रुबाई है, काफ रा तो यासीन, लिखी हुई तहरीरी चिट्ठी को कहते हैं, है ना, तहरीर जो लिखी हुई है, और किसी भी मामले में कोई रिपोर्ट जो तहकीक शुदा हो और मुकम्मल हो और वो प्रिंट हो जाए, है ना, कर्ता से अबियत, या इस तरह का मैंने आपको मिसाल भी बताई थी। फिर उसके बाद है 91 में खौदहिम, खाब व द्वाद, बताया था आपको कि हौज में उतरना, उसमें घुसना, पानी में मशगूल होना, इससे ये लफ्ज उधार के मानी लेके फजूल बातें जो हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे होता है ना गौर व खौद करना, मेन मेख निकालना। 92 आयत में उम्मल कुरा, क्या मानी है इसके? इससे मुराद हाँ करिया एक बस्ती को कहते हैं, कुरा ज्यादा को, और बस्तियों की माँ कौन सी बस्ती है? मक्का। वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो यहाँ मुराद क्या है कि नमाजों की पाबंदी करते हैं। वमन अजलमु इसम तफसील है, और मानी क्या है इसके? ज्यादा जुल्म करने वाला। इस तरह का रूटवर्ड क्या है? क्या मानी है इसके? मोहतान लगाना। पहले भी ये आप पढ़ चुके हैं। वैसे तो होता है ना किसी चीज को काटा जाता है, जैसे चमड़े को काटना ठीक करने के लिए, लेकिन ये है कि खराब करने के लिए, यानी नुकसान पहुंचाना या झूठ गढ़ना। उहिया वही की गई है मेरी तरफ, और यहाँ पे यूहा में क्या नजर आ रहा है आपको? या गिर चुकी है ना, नजर नहीं आ रही आपको। गमरात, गमरात जो है गैन मीम रा, इसका रूट वर्ड है गैन मीम रा, और इसके मानी है बेहोश होना। कुरान में बेहोश होने के लिए एक तो सायका है, एक घबराहट की वजह से बेहोश हो जाना, और सायका गिरने वाली बिजली को भी कहते हैं ना, कि बाज़ औक़ात जब वो उसका धमाका होता है लोग बेहोश हो जाते हैं। एक है सकरा, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, सूरत काफ में हमें ये मिलती है आयत, कि यानी ऐसी हालत, सुकर ऐसी हालत को कहते हैं जब इंसान अकल और होश खो बैठे। इसीलिए शराब और नशे वाली चीज, क्योंकि उससे भी अकल चली जाती है ना, सुकर सुकरान सुकारा ये उसी से है। तीसरा लफ्ज है बेहोशी के लिए गमेरा, और कहाँ है ये गमेरा? अभी जो आज हमारे सबक में है गमरातल गमरातिल मौती, तो गमेरा के मानी होते हैं बेहोशी, तारी होना, मौत की तकालीफ और सख्तियां उसके लिए भी आता है कि जिससे इंसान के होश हवास जो हैं वो जाते रहेंगे। गमरतुन कसीर उन पानी को भी कहते हैं जिसकी गहराई जो है वो पता ही ना चल सके कि पानी कितना गहरा है ना। तो अगर पानी इतना गहरा हो कि उसकी गहराई का अंदाजा ही ना हो सके, तो इस ये किस चीज की तरफ इशारा करती है ये बात? पानी की सख्ती की तरफ ना। पानी की सख्ती की तरफ, तो ये है गमेरा। इसी तरह एक लफ्ज है सरा, स्वाद राइन, ये मशहूर बीमारी है जिसमें इंसान बेहोश होकर पटाख से जमीन पर गिरता है, जैसे मिर्गी की या उम्मत से बयान, तो उसके लिए सरा का लफ्ज है। एक है फिर गशी तारी होना, तो गशी क्या होता है कि किसी बीमारी या दहशत की वजह से या किसी वजह से इंसान पर बेहोशी तारी हो जाती है। तो बेहोशी के लिए पांच लफ्ज हैं, सयका सकरा गमरा सरा और गशी। तो आज क्या है? गमरा यानी शदीद किसी चीज की शिद्दत और सख्ती की वजह से बेहोशी। बासितू बसता है ना, फैलना फैलाना, और बसीत तो इसी से है, बासितू यानी फैला फैला कर, बढ़ा बढ़ा कर। हूनी हा वनून जिल्लत को कहते हैं, जिसमें जिल्लत हो तो हीन हो, इसी से हयन भी है कि ये काम मेरे लिए आसान है। तस्तकबिरून काहबारा किब्र यानी किब्र मांगना। आयत 94 में है जे तुमूना, क्या रूट वर्ड है इसका? जीम जीम अलिफ हमजा जा आ, जैसे हमें ये मिलता है ना जे तुमूना, और इसके अलावा फुरादा, फुरादा जो है फारा दाल से है फर्द, इसी से फुरादा है अकेला अकेला, फुरादा फर्द की जमा है, जैसे सुकारा होता है ना सुकरान की जमा है, इसी तरह कुसाला कुसलान की जमा है। फुरादा एक एक, अकेला अकेला। खवलनाकुम, खा वो लाम, इसके मानी है नेमत अता करना। वैसे तो नेमत अता करने के लिए हमें पांच लफ्ज मिलते हैं, अनअमा, नामा, खवला, अतरफा, अगना और अकना। तो अभी हमें जो पढ़ना है वो है खवाला। इसके मानी है बख्शना, मालिक बनाना, किसी को भी खादिम वगैरह अता करना। तो यानी किसी को नवाजना, जहो हशमत देना, माल अता करना, इसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वरा, वरा के मानी क्या है? पीछे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुफाकुम का रूपवर्ड क्या है? शीन फा ऐन, मानी क्या है इसके? सिफारिश करना और किसी की जो राय होती है ना उसके साथ अपनी राय को मिलाना, तो ये जोड़ा जोड़ा उसके लिए भी आता है ना। जाम तुम, जा एन मीम इसका रूटवर्ड है, गुमान करना। तकत्ता का रूटवर्ड क्या है? पाप तो एन, और हरूफ मुकत्तात आप पढ़ चुकी हैं, मानी क्या है? काटना। मानी इसके हैं अलग अलग करना, काटना। फिर इसके बाद है फालेकू। हाँ, फालेकू जो है फालाम काफ फलाका, और यह है इसके रूपवर्ड और इसके मानी है फाड़ना। फाड़ना के लिए कुरान ने नौ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, पहले ही पढ़ चुकी हैं। खराका, खराका क्या होता है? ये आप सूरत काहफ में पढ़ती है ना कि हजरत जो खिजर थे उन्होंने कश्ती को फाड़ दिया, तो किसी चीज को फाड़ना, खराब कर देना, तोड़ फोड़ करना, बिगाड़ना, खराका। दूसरा कद्दा, ये सूरत यूसुफ में आप पढ़ेंगी कि उसने जो है वो कमीज को जब पकड़ कर खींचा तो फाड़ डाला, कद्दत कमीसा हो, किसी चीज को लंबाई के रुख फाड़ना, लेंथ की उस पर फाड़ देना। इसी तरह कद, इंसान की लंबाई को कहते हैं, उसका कद कितना है, कदो कामत। फतारा, किसी चीज को लंबाई में यूं फाड़ना कि उसमें शगाफ बढ़ जाए। फतूर, अफतारी भी है ना, सुराख करना, किसमें सुराख होता है जब अफतारी करते हैं? रोजे में सुराख हो जाता है। फर्ज बसरा हल करा मिन फतूर। फिर है फजारा, किसी चीज को वसी पैमाने पर फाड़ना है ना, फजरा, वसी पैमाने पर फाड़ना। जैसे जब फजर होती है तो फजर को फजर क्यों कहते हैं? आप देखते हैं आसमान के किनारे किनारे रोशनी वसी पैमाने पर फैल जाती है, वसी पैमाने पर फाड़ देना। फिर है मखारा, पानी के कटाव को कहते हैं। मखारा के क्या मानी है? यानी पानी, पानी के अंदर जैसे पानी को फाड़ा जाए, जब कश्ती पानी में चलती है ना तो ऐसा महसूस होता है कि वो पानी को चीरती है, पानी को फाड़ती है, उसमें चक्कर लगाती है। पानी के अंदर कटाव और चीर फाड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम नहीं। कुरान में आता है वतरल फुल का मवाखिरा फी, और तुम देखते हो कि कश्तियां दरिया में जो है वो पानी को फाड़ती भी चली जाती है। फिर है शक्का, सुम्मा शककनल अर्दा शक्का। तो आपको बताया ही था कि जो सख्त चीजें हैं ना, जैसे आसमान, जमीन, चांद, पत्थर जैसी बड़ी बड़ी सख्त चीजों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है शक्का का। फिर है फलाका और फराका। फलाका और फराका है जो है ये दोनों बहुत, यानी नंबर सात और आठ ये करीबी मानी रखते हैं। फलक के मानी क्या होते हैं? यानी फटना और फिर अलग हो जाना, है ना। तो फलक और फरक दोनों करीबी माने रखते हैं। मसलन वाइज फरक ना विकुमुल बहरा, क्या किया, हाँ उसको जो है वो समंदर को फाड़ दिया। फंजैना कुम्वा गरकना आले फिरौन, तो उनको डुबो दिया और आले फिरौन को भी डुबो दिया, तो तुम्हें बचा लिया। तो इसी तरह जैसे अरबी में अगर किसी के जैसे बाल है ना, उसके दरमियान लोग जैसे पंजाबी में कहते हैं चीर या उर्दू में कहते हैं मांग निकालना, उसके लिए भी फरक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि दो हिस्सों को अलग अलग कर दिया, यानी फट फाड़ भी दिया अलग भी कर दिया। तो ये हैं इसके मानी, यानी फला का किसी बेजान चीज को दो हिस्सों में फाड़ना और अलग कर देना, और फर्क क्या है, किसी चीज को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में अलहदा कर ले देना। तो दोनों के लिए ये जो है इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और नावा लफ्ज है मज्जा का, कपड़ा फाड़ना, बखेर देना, तबाह कर देना, अमल की शिद्दत की वजह से इसमें जैसे किसी चीज को टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देना, मज्जा का। फजअलनाहुम अहादीसा वमज्जकनाहुम कुल्ला मुमज्जक, अल्लाह ताला कहते हैं वो कौमें जिन्होंने मेरी नाफरमानियां की थी हमने उनके अफसाने बना दिए, तो इनको टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर दिया। फिर इसके बाद लफ्ज है हब का, हब किसे कहते हैं, दाने को कहते हैं, गंदम का दाना। और आमतौर पे दाने से इंसान मोहब्बत करता है, जिंस है ना, एक चीज है, बेचता है खरीदता है, पैसे आते हैं तो उससे उसी से ही मोहब्बत किसी से इस्तेमाल किया जाता है। नवा, नवा जो है नवातुन की जमा है और नून वो या इसका रूट वर्ड है। तू फकून, हमजा फा काफ इफ्क, क्या होता है ये, बोहतान लगाना, किसी बात को फेर देना, यानी उल्टा जैसे फेर दिया जाए। इस बाह सुबह से है, स्वाद बाहा, सकाना किसी चीज का सुकून इख्तियार करना, रुक जाना। हुसबाना हिसाब किताब, हा सीन बा, तो उसी से हिसाब किताब के लिए जैसे कैलेंडर वगैरह नहीं होता उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नुजूम नजम से है, सितारे को कहते हैं, नुजूम जमा है। फिर है मुस्तकर्रुन व मुस्तौदा, तो मुस्तकर्रुन जो है इसका रूप है काफ रारा, मानी है ठहरना, इसी से इसके एक मानी है जैसे ठहरना, करार पकड़ना, इसी से ठंडा होना भी, आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आइन, आंख की ठंडक, उसके लिए भी कोई चीज जब रुक जाती है, करार पकड़ती है तो ठंडक बन जाती है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एक मानी ये होते हैं कि हर एक के लिए एक जाए करार है, ठहरने की, कायम रहने की एक जगह है। वह मुस्तौदा वाल ऐन, सुपुर्द करना, यानी इससे मुराद क्या है, जहां उसको सौंपा जाएगा, यानी दुनिया में एक जगह ठहरता है तो फा मुस्तकर्रुन, और वह मुस्तौदा और मरने के बाद जो उसको जगह मिलने वाली है तो वहां वो सौंपा जाएगा। इसके अलावा कहते हैं कि जो रहने मादिर है ना, अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक फा मुस्तकर्रुन यानी माँ के पेट में ठहरने की जगह, वह मुस्तौदा तो बाप की पीठ, यानी सुलबे फिदर को भी कहते हैं कि जब इंसान अभी माँ के पेट में नहीं था तो बाप की पीठ में खजाने की सूरत में जमा था। फिर उसके बाद जो है आयत 99 है, फअखरजना, खराजीम, खरजा निकला और अखरजा निकाला, क्या हो गया, नजला उतरा और अंजला उतारा, नसरा मदद करना और अंसरा मदद की, नसरा जो है वो क्या है, मदद जैसे उसे एक ने मदद की और अनसरा अनसार उसकी मदद करने वाले हैं ना, अनसरा। आगे है खदरन, ख्वा द्वादरा सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज जो सब्ज हो, इसी से जो खेती है सरसब्जा हरियाली उसके लिए मानी लेके इस्तेमाल किया जाता है। हब्बन दाना मुतराकिबा, राकाबा रकाबा होता है सवार होना, रिकाब। और ऊंट जो होता है ना, जैसे उस पे बैठे हैं आप सवारी करें, कोई जानवर है उस पर बैठे हुए हैं, तो बाज का ये होता है कि एक के साथ से दूसरा भी साथ ही जुड़कर बैठता है ना, है ना। तो जो तराकिब है ना, जैसे एक दूसरे के ऊपर एक और, एक के ऊपर एक, तो मुतराकिब एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ। आपने कभी देखे हैं अनार, है ना, क्या कहते हैं उसको आप इंग्लिश में, पोमोग्रेनेट। उसमें आप देखें कि जब आप उसको खोलते हैं रेड होता है या वो व्हाइट होता है अनार, तो दाना कैसे होता है, ऐसे लग रहा होता है एक दाना हर दाना दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, और ऐसे लगता है कि एक दाना दूसरे पर ना सवारी कर रहा है, बिल्कुल ऊपर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे एक के ऊपर बहुत सी सवारियां बैठी हुई हैं, है ना। तो मुतराकिबा। इसी तरह आप कभी, आपने वो गंदुम के दाने देखे, गंदुम का सिक्का, ये कॉर्न, या ये जो आप खाते नहीं है आटा खाते हैं, जो रोटी जिसकी खाते हैं, तो वीट जो है जिससे फिर आटा बनता है, तो गंदुम के लंबे लंबे सिक्के आपने कभी देखे हों। बाद लोग डेकोरेशन के तौर पर उसको कलर करके भी अपने घरों में रखते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक दाने पर दूसरा दाना चढ़ा हुआ होता है, बता रहा के बाद। तो दरअसल यहाँ पर जो है अल्लाह ताला अपनी जो है वो रुबूबियत और अपनी तौहीद की निशानियां जो है वो बता रहे हैं कि तय बर तय चढ़े हुए दाने, हब्बम मुतराकिबा, तो अनार के दाने हों या फिर गंदुम के दाने हों या फिर अंगूर के दाने हों, किसी भी चीज के जो दाने हैं इंसान जो खाता है तो ऊपर चढ़े हुए होते हैं। नखल, नखल जो है नून खा लाम, क्या मानी है इसके, खजूर। और खजूर कितने लोग खाते हैं, है ना, तो खजूर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर किया जाता है। और खजूर के लिए जो है हमें मिलते हैं जैसे नखला, नखल और नखील, ये लफ्ज मिलते हैं ना, दूसरा है लीना और तीसरा है रुतब। तो जो है ना नखला, जैसे खजूर का पौधा होता है नखला दरख्त, और अगर नखील हो तो बाग या खेती को कहते हैं, जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नखला क्या है, पौधा है, दरख्त है, और अगर नखील होगा तो मुराद क्या है, बाग है या खेती है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, नखल, नखल। और नखल जो है ना नखला की जमा है, खजूर के दरख्त, इसके फल, खजूरें, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर है तल इहा, तोए लाम ऐन इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है निकलना। सूरज के लिए क्या आप कहते हैं, जब सूरज निकलता है तो क्या कहते हैं, सूरज तुलू होना, तो तुलू होने का रूट वर्ड क्या है, तोए लाम ऐन, निकलना, जाहिर होना, नमूदार होना, सामने आना। किसी से आप कहती हैं ये बात, मैं उसको उसको मैंने इत्तला दे दी है, मुतला कर दीजिए, है ना, तो इस तरह आप इस्तेमाल करते हैं आगाह करने के लिए। तो तला इस नए खोशे को कहते हैं जब वो अपने शगुफे या खजूर के गाबे से नमूदार होता है। गुच्छा तो बाद में बनेगा ना, जबकि वो अपने शगुफे यानी खजूर शुरू जब स्टार्ट होता है ना, जब वो बनना, तुलू होना, निकलना, तो जब वो अपने शगुफे से या खजूर के गाबे से नमूदार होने लगता है तो उसको तला कहते हैं, उस नए खोशे को कहते हैं। सितारों के लिए भी तुलू और गुरूब होने के लिए भी ये तला लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तुलू होना उसका। तो आपको समझ आ गई, यानी खजूर के उस नए खोशे को कहते हैं जबकि वो अपने शगुफे या खजूर के गाबे से یعنی کھجور کا جو درخت بنا ہوا ہوتا ہے اس کے گابے میں سے جب وہ بالکل نیا نیا نکلنے لگتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے. آگے ہے قنوانن. قنوانن جو ہے قاف نون واو, یہ لفظ صرف کھجور اور انگور کے گچھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ابھی توڑنے کے قابل بھی نہیں ہوا ہوتا. تو کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ قاف نون واو. یہ کھجور یا انگور کا وہ گچھا ہوتا ہے جو ابھی کچا ہے اور ابھی توڑنے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کے لیے یہ مختص ہے یہ لفظ. تو قنوانن کے معنی پھر کیا ہوئے؟ گچھے. ٹھیک ہے, تو اب سمجھ آ گیا آپ کو فرق؟ کل ایہا قنوانن دونوں کا فرق سمجھ آیا, یعنی سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ ہاں اب اور اس سے اگلی سٹیج اس کی پھر قنوان بنتی ہے نا. پھر ہے دانیتن. دانیتن کی فیملی کا مجھے کوئی لفظ بتائے. دنیا. دیکھیں دنیا اور دانیا قریب ہے نا, کیسے؟ ہاں دنیا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال نون یا جھکنا, نزدیک ہونا, ادنا یودنی یعنی نزدیک ہونا. تو اسی سے دال نون وہ کوئی چیز ردی ہے, کمزور ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیز قریب ہے وہی چیز بعض اوقات حقیر بھی ہوتی ہے نا. اب کیا ہے کہ جب پھل پک جاتا ہے, گچھے کے گچھے ہوتے ہیں تو وہ جھک رہے ہوتے ہیں, گر رہے ہوتے ہیں, وزن ہوتا ہے نا اس کا پھل کا رس وغیرہ, تو جھک رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے دانیتن. تو دانیتن کے پھر کیا معنی پتا چلے؟ جھکے پڑتے ہیں. گچھا بن رہا ہے گچھے کے وزن سے, بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں. عنوان گچھے. دانیتن جھک رہے ہیں. وجناتن اور باغات. تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں جین نون نون چھپی پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. باغات کو جنات کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی زمین کو پودے چھپا دیتے ہیں. جو اچھے گھنے باغ ہوتے ہیں زمین نظر ہی نہیں آتی. عناب کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ انگور کے لیے. عین نون با. زیتون. زیت جو ہے یہ زیتون اللہ تعالی نے وَتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ہے نا, اس کی جو ہے وہ قسم بھی کھائی ہے. تو یہ جو زیتون ہے یہ بہت ہی زرخیز جو ہے یہ پھل ہے, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زایاتا. شاباش. تو اب آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل ہی استعمال کرنا چاہیے ہے نا. تو اس کا جو تیل ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ تیل اس کا زیادہ روشنی کرتا ہے اور اس میں کالک بھی نہیں ہوتی. جیسے بعض تیل میں تیل ڈال کر آپ کوئی دیا جلاتے ہیں یا روشنی کرتے ہیں, لیمپ وغیرہ جلاتے ہیں, تو جیسے اس کا شیشہ ہی کالا ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد, آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن جو زیتون کا تیل ہوتا ہے نا, بڑا خالص تیل ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی اب تیل ہیں اس میں سب سے اچھا یہ ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے, اور اس کا پھل بھی. تو یہ پھل جو ہے یہ زیتون جو ہے یہ پھل کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور جیسے کھانے کے طور پہ بھی, سبزی کے طور پہ بھی. اور یہ جو ہے وہ گرین بھی ہوتے ہیں, بلیک بھی ہوتے ہیں, اور تھوڑے گہرے رنگ کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ہیلدی فوڈ بھی ہے. بہرحال برومان. ہاں رومان جو ہے یہ انار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کچھ پھلوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے, اور اس میں انار بھی ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے را میم نون. مشتبہن وغیرہ متشابہ. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین با ہا. یعنی ملتے جلتے ہیں آپس میں, اور اگلے کا بھی متشابہ کا بھی شین با ہا, تو غیرہ لگ کے نہیں ملتے جلتے. سمر ہی. سا میم را. سمر جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھل کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کے پھل کے لیے بھی, اور پھل کے بعض اوقات پکنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے وہ ین اے ہی. اور ین اے ہی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے یا نون عین ینا. اس کے معنی ہے پھل کا بالکل پک کر تیار ہو جانا, پختہ پھل کو کہتے ہیں. यानी फल बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। उन्जुरु इला समरे ही इजा असमरा वयन ए। एक और लफ्ज भी फल के पकने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जीन नूनिया, और ये हमें आप सूरत मरियम जब पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि वो इतना पक जाए कि खुद ब खुद दरख्त से गिर पड़े, फल को तोड़ना या चुनना जब बिल्कुल वो पका हुआ हो तो उसके लिए वो लफ्ज है। वहुजी इलेही की बेजिज इन नखलती तुसाकित अलेही की रुताबन जनिया। जब हजरत मरियम के बारे में आप पढ़ेंगी तो वहां पे ये आएगा। फिर उसके बाद है खराकू, आयत 100 में खराकू फाड़ना है ना, तो आपने फाड़ना लफ्ज जो है पहले भी पढ़ा है कि फाड़ना तो है लेकिन किस तरह से फाड़ना है खरा का, किसी चीज को फाड़ना, खराब कर देना, तोड़ फोड़ करना, बिगाड़ देना। फिर है आयत 103 में तुदरे को हूं दरा का इदराक, जैसे किसी चीज को पाना। हफीज हाफा जोए से है हिफाजत, दरस्ता दाल रा सीन दरस, ये लफ्ज जो है ये सबक पढ़ना पढ़ाना उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दा रा सीन पढ़ना, इसी से दरसो तदरीस दरस देना। वाले मुबैयना हूं बायानून बयान करना। फिर उसके बाद आयत 108 में है तसुबू, तसुबू जो है बुरा भला कहना। हाँ, इसका रूट वर्ड है सीन बाबा, बुरा भला कहना। और कुरान में जम्मा अतबा लामा सब्बा और सर्रबा, ये इतने लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं लेकिन आज हमारे लिए सब्बा जो है आज के सबक में है, इसके मानी है फोश गालियां देना, बहुत ज्यादा गालियां देना, किसी को बुरा भला कहना। फिर आयत 108 में है फयुनब्बिउहुम, क्या है रूट वर्ड इसका, नून बा हमजा। और अक्समु ये भी कसम के लिए है, ईमान भी कसम के लिए है ना, तो जहादा ने सख्त कसम खाना, पक्की पुख्ता। युशइरकुम, युशइरकुम शीन ऐन रा, बाल को कहते हैं और बाल बहुत बारीक होता है, इसी से किसी चीज की बारीकी तक पहुंचना, शऊर हासिल करना, उसके लिए शऊर इस्तेमाल किया जाता है। शेर व शायरी के लिए भी आता है। मुकल्लबु काफ लाम बा कलब, यानी तब्दील कर देना हालत को, इसी से इनकलाब है, हालत तब्दील हो जाती है, कल्ब उसकी हालत बदलती रहती है, दिल की कैफियत बदलती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी ईमानी कभी उससे हटकर, तो ईमान भी थोड़ा बहुत होता रहता है। अफीदतहुम ये दिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अबसार जो है वो निगाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वह नजरहुम ये रूपट है वोजालरा, छोड़ देना, छोड़ दीजिए। भट तुगयानहिम, तुगयान का रूटवर्ड क्या है, तो ए गैन वो भी और या भी दोनों हो सकते हैं, और या माउन आयन नीम हा,